उसके भतीजे गुन्नू पुन्नू भी नौकरी की खोज में उसके पास ही आकर रहते हैं। अपने भाई नाथ और मुकुंद की जिम्मेदारी उसी पर है। उसके यहाँ क्वार्टर बड़ा होने से बहनें भी छुट्टी बिताने के लिए वहीं आकर रहती हैं और किसी न किसी बात पर टीका टिप्पणी करती रहती हैं। हर वक्त की चिक चिक से तंग आकर उसकी पत्नी भी अपने घर चली जाती है। उसके शब्दों में कितने कितने लोग आकर पड़े रहते हैं, उससे मुसाफिर खाने से भी कुछ कम नहीं लगता मुझे। परिवार के बहुत लोगों के एक साथ क्वार्टर में रहते हुए जैसे शंकर की अपनी कोई जिंदगी ही नहीं रह गई है। ग्लास टैंक एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसका प्रत्येक सदस्य जीवन के प्रति अपनी मान्यताएं रखता है। वह दूसरे के साथ सहमत न होते हुए भी उसकी भावना की कद्र करता चलता है। घर की स्त्री का सुभाष नामक युवक से उसके बचपन से ही लगाव है, बल्कि कहना चाहिए लगाव नहीं, सहानुभूति है। उसके बच्चे उसकी भावुकता को महत्व नहीं देते। पति का दृष्टिकोण भी उससे अलग है। सुभाष और नीरू अपने ही ढंग के पात्र हैं। उनके भीतर कोई ऐसी चीज है जो उन्हें खाए जा रही है। पृष्ठ 103। नीरू स्वभावतः गंभीर है और अपनी मम्मी की बातों का कुछ कुछ अर्थ समझती है। प्रारंभ से अंत तक कहानी में एक तनाव, एक दुख की अनाम छाया सी दिखाई देती है। प्रयोग की भूमिका पर लिखी गई कहानियां। राकेश बीच की पीढ़ी के कहानीकारों में एक ऐसे कहानीकार हैं जो नए और पुराने दोनों के लिए नए और पुराने हैं। राकेश ने निश्चय ही ऐसी कहानियां लिखी हैं जो सदैव याद की जाएंगी। उनकी कहानियां उन्हें एक परिष्कृत और गहरी अंतर्दृष्टि का रचनाकार सिद्ध करती हैं। इधर अपने लेखन के उत्तरांश में उन्होंने कुछ प्रयोग भी किए हैं। यद्यपि इन कहानियों का कथ्य परिवेश प्रतिबद्ध है, ये रचनाकार की अनुभूतिगत ईमानदारी की प्रतीक हैं, किंतु फिर भी फौलाद का आकाश की कहानियां प्रयोग धर्मिता का आभास देती हैं। ग्लास टैंक, सोया हुआ शहर और फौलाद का आकाश ऐसी ही कहानियां हैं। कुछ समीक्षकों ने इन कहानियों को उद्देश्यहीन माना है। राकेश जिस यथार्थ के उद्घाटन और नए सामाजिक संदर्भों के अन्वेषण के लिए जितने प्रख्यात हैं, उस लिहाज से इन कहानियों पर सहसा विश्वास नहीं होता है। इनमें मैनरिज्म अधिक लगता है और सिंबोलिज्म, अर्थामित व्यक्ति, सांकेतिकता तथा अमूर्त प्रतीक विधान के बावजूद ये कहानियां कोई प्रभाव डालने में असमर्थ हैं। एक, पहले ग्लास टैंक की कहानी को ही ले लीजिए। इसमें बड़ी सूक्ष्मता के साथ एक पारिवारिक ट्रेजेडी को अभिव्यक्ति मिलती है। इस कहानी में निरंतर कृत्रिम होती जा रही जिंदगी और उसमें समाती जाती ऊब व उदासी को निरूपित किया गया है। मछली व ग्लास टैंक प्रतीकार्थ रखते हैं। इन प्रतीकार्थ की पूरी तरह हृदय गाहे प्रतीत नहीं होती। मछली का प्रतीक तो फिर भी संवेद्य प्रतीत होता है, किंतु ग्लास टैंक का प्रतीक आरोपित लगता है। अश्क जी ने ठीक ही लिखा है कि ग्लास टैंक का प्रतीक आरोपित लगता है। यदि ग्लास टैंक के बारे में कही गई सभी बातें कहानी से काट दी जाएं, यानी कहानी के पहले चार पृष्ठ, चौथे पृष्ठ की केवल अंतिम चार पंक्तियों को छोड़कर काट दिए जाएं और कहानी दूसरे परिच्छेद से शुरू की जाए, तो प्रभाव में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। दो, मछलियां आत्मकेंद्रित और अपने ही में डूबी जिंदगी की ऊब और निरस्ता को व्यक्त करती हैं। कहानी की नीरू का यह सोचना भी इसी से संबद्ध है कि बिल्लोरी पानी में तैरती सुनहरी मछलियां अच्छी लगती थी, मगर हर बार देखकर मन में उदासी भर जाती थी। नोट एक, डॉक्टर सुरेश सिन्हा, नई कहानी की मूल संवेदना, पृष्ठ 103। दो, अश्क, हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय, पृष्ठ 253। पृष्ठ 104, सोचती कैसे रह पाती हैं ये, खुले पानी का के लिए कभी इनका जी नहीं तरसता, कभी इन्हें कुछ महसूस नहीं होता कि ये सब एक एक और अकेली हैं। एक दूसरे से कुछ कहना चाहती हैं, कभी शीशे से इसलिए टकराती हैं कि शीशा टूट जाए, शीशे के और आसपास के बंधन से ये मुक्त हो जाएं। एक, नीरू और मम्मी के अतिरिक्त परिवार में डैडी और बीरे का ही महत्व अधिक है, किंतु इस परिवार पर छाई उदासी की परतों का निरंतर घनीभूत होते जाना एक तीसरे व्यक्ति सुभाष के कारण है। नीरू और मम्मी दोनों उनकी ओर झुकी हुई हैं। मम्मी के झुकने में सहानुभूति और करुणा का गहरा दर्द भरा भाव है, तो नीरू के झुकने में दर्द भरे प्यार का। नीरू का मछलियों की इमोशनल लाइफ के बारे में जिज्ञासा होना भी उसकी भावात्मक मनःस्थिति को ही रेखांकित करता है। ग्लास टैंक परिवेश की सीमितता और उसकी हदों को व्यक्त करता है। ग्लास टैंक में मछलियों का इधर से उधर घूमना और अपनी हद बंदी पर शीशे से उनकी टकराहट में उनकी मुक्ति का प्रयास झलकता है, वैसे ही नीरू व मम्मी भी अपनी सीमाओं में रहकर भी उनसे ही टकराती रहती हैं। बाहर आना वे भी चाहती हैं, किंतु वे अपनी विवशता और उदासी पर दुखी तो हो सकती हैं, उसे काट कर मन मुताबिक नहीं जी सकती हैं। यही प्रतीकार्थ कहानी देती है, किंतु यह सर्व संवेद्य नहीं बन पाया है। यहाँ विशेषीकरण का आग्रह है, यदि यह न होता तो कहानी अपनी प्रयोगधर्मी भूमिका पर और सफल होती। हाँ, प्रारंभिक पृष्ठों में लगता है कहानीकार पाठक को भरमा रहा है और कहानी वहीं से शुरू होती है या होना चाहिए थी, जहाँ का संकेत अश्क जी ने किया है। मम्मी का करुणापूर्ण प्रेमिल दृष्टि का आभास इन पंक्तियों में है। नाता रिश्ता नहीं है, फिर भी मैं सोचती थी कि दो, वे सुभाष के लिए चिट्ठी में को लिए लग्र रहती थी, भीतर से छिली रहती थी। वे उसके आगमन पर उनका बराबर देखते जाता नीरू की दृष्टि में ऐसा है। मैं देख रही थी कि मम्मा एकटक उसे ताक रही थी, जैसे उस आंखों से ही उसके माथे के जख्म को सहला देना चाहती हूँ। तीन, नीरू के मन में उसके सुभाष के लिए जो दर्द मिश्रित प्रेमिल भाव है, उसका आभास तो कई वाक्यों में मिलता है। बीच बीच में उसकी आंखें मुझसे मिल जाती, मुझे अपना आप भी अपने से दूर बियाबान में खोया सा लगता। यह भी लगता कि मैं आंखों से कह रही हूँ कि जिसे तुम सहला रहे हो वह ब्राउन कैट नहीं है, ब्राउन कैट मैं हूँ। यहाँ अंधेरे से दूर में अंधेरे में खड़ी हूँ, चाह रही हूँ कि कोई आकर मुझे देख ले और गोद में उठा ले। चार, नोट। एक, क्वार्टर ग्लास टैंक पृष्ठ 82। दो, क्वार्टर ग्लास टैंक पृष्ठ 86। तीन, क्वार्टर ग्लास टैंक पृष्ठ 86। चार, क्वार्टर ग्लास टैंक पृष्ठ 95। पृष्ठ 105। इसी प्रकार सुभाष के जाने की बात पर वह यदि यह अनुभव करती है कि जैसे कपड़े उतारकर मुझे किसी ने ठंडे पानी में धकेल दिया हो, दो, तो चले जाने पर यह सोचती है, मैं कमरे में पहुंची तो लगा जैसे अब तक के घर के अंदर थी, अब घर से बाहर चली आई हूँ। दो, सचमुच कहानी में विवेचित परिवार की ये दो मछलियाँ नीरू और उसकी मम्मी ग्लास टैंक की मछलियाँ ही हैं, जो निरंतर बाहर आने को छटपटाती हैं, किंतु उस छटपटाहट को सार्थक बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाती हैं। कहानी उनकी नियति भी उन मछलियों की सी ही है, जो अपनी इमोशनल लाइफ की कीमत पर सिर्फ शीशे से टकराती रहती है। कहानी से संकेतिक तथ्य वर्तमान जीवन की ऊब, उदासी और पीड़ा व अकेलेपन को तो व्यक्त करता ही है, लेखकीय दृष्टि की गहनता को भी संकेतित करता है। कहानी में सांकेतिकता और प्रतीकात्मकता से अधिक काम लिया गया है। यह बात अलग है कि इस शैलिक और प्रतीकात्मकता में साग्रह प्रयोग की प्रवृत्ति का आभास भी मिलता है। हाँ, ग्लास टैंक की एक विशिष्टता यह भी उभरती है कि तीसरा व्यक्ति सुभाष अपनी उम्र के कारण मम्मी और नीरू दोनों के आकर्षण और लगाव का कारण है। क्या इसका अभिप्राय यह निकाला जाए कि पुत्रों के भीतर इस तरह की स्थितियां किसी व्यापक सामाजिक प्रश्न से जुड़ी हुई हैं। पुत्र विद्रोह कर सकता है, पर पुत्रियां आर्थिक और सामाजिक कारणों से भी सभी जनों के साथ इस तरह बंधी हुई हैं कि वे उन्हें अपना प्रतिस्पर्धी भी मानती हैं और आदर्श भी। 3. कहानी की शैली में एक खिंचाव है, वह टू द पॉइंट है। एक एक वाक्य को रुक रुक कर पढ़ने से ही कहानी की मूल संवेदना को पाया जा सकता है। खोया हुआ शहर कहानी भी राकेश की प्रयोग धर्मिता को स्पष्ट करती है। इसमें महानगरों की रात की जिंदगी का वर्णन किया गया है। सारा शहर तो सोया हुआ है, किंतु एक दूसरी जिंदगी रात को भी चलती दिखाई गई है। इस कहानी की प्रयोगशीलता उसके कथ्य में नहीं, शिल्प में है। बीच बीच में आए अनेक नए प्रतीकार्थ रखने वाले शब्द से स्थिति और कहानीगत परिवेश को सांकेतिक शैली में उजागर किया गया है। कहानी में परिवेश का अंकन बड़ी सूक्ष्मता से किया गया है। उसका पहला पृष्ठ ही परिवेश का काव्यात्मक अभिव्यंजन है। दुम हिलाता कुत्ता, सिगरेट की डिब्बी का फटा टुकड़ा, मकानों की छतों पर लगे एरियल का कांप जाना, कबूतर का पंख फड़फड़ाना, कांच लगे बरामदों में कीड़े का तड़फड़ाना, औंधी रखी चारपाइयों के पायों से बना चौखटा, फ्लश के हत्थे का जोर जोर से हिलाया जाना, पेड़ के तने के पास से गिलहरी का सिर निकालना और गत्ते के डिब्बियां व चमकते हुए गोल सुनहरे पत्ते आदि का प्रयोग प्रतीकार्थक लगते हैं। नोट: 1. क्वार्टर ग्लास टैंक पृष्ठ 97, 2. क्वार्टर ग्लास टैंक पृष्ठ 98, 3. क्वार्टर डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह माध्यम वर्ष 4 अंक 9 पृष्ठ 62 पृष्ठ 106। ये सभी महानगरीय जीवन की विचित्रताओं और विडंबनाओं की सार्थक अभिव्यक्ति देते हैं। राकेश ने बड़ी सफाई से सांकेतिक शैली में कहानी के कथ्य को अभिव्यक्ति दी है। कहानी में आए ये वाक्य परिवेश का स्पष्ट परिचय देने के लिए काफी हैं। कर क्या रहा था? वही कर रहा था जो मसे फूटते ही आज के लड़कों को करना आ जाता है। 1. लगता है सब्जी मंडी वालों की कोई लड़की थी। वे कुत्ते के बीज अब इस इलाके में भी मारने लगे हैं। सवेरे सब्जी मंडी से शीतल दास को बुलाना। वे हमारे इलाके में मार करेंगे तो हम उनका बोरिया सब्जी मंडी से उठवा देंगे। 2. फौलाद का आकाश कहानी का प्रत्यक्ष संकेत तो यह है कि पति पत्नी के संबंधों के बीच एक तीसरा व्यक्ति है जो व्यवधान बनकर घुल आया है। मीरा का यह अनुभव करना कि रवि प्यार करते वक्त भी चुंबनों की गिनती करता रहता होगा, न केवल उसके जीवन विषयक ऊब और उदासी को व्यक्त करता है, अपितु कहानी की शैल्पिक सज्जा को प्रयोगशील कहानियों की पंक्ति में भी खड़ा कर देता है। कहानी में चित्रित परिवेश और रवि से संबंधित सभी स्थितियों आरोपित सी प्रतीत होती हैं। यूं ये कहानियां बहुत अच्छी हैं, किंतु इन्हें राकेश ने प्रयोग की धुन में अतिरेकी संदर्भों से भी जोड़ दिया है। सेफ्टी पिन कहानी का परिवेश भी इससे बहुत अलग नहीं है। उसमें गहराई कम है, आरोपित स्थितियां ही अधिक हैं। जख्म कहानी के नायक की घायल मना स्थिति परिवेश से प्रतिबद्ध तो है, किंतु राकेश के प्रयोग वित्त के कारण वह उसे बार बार दूसरों को दिखाता फिरता है। यही आरोपित स्थिति है। इसमें आए आवश्यकता से अधिक कथनों का प्रभाव कहानी के प्रभाव को कुछ अंशों को ही कम करता है। कथानायक की मुखरा वृत्ति और शब्दों की फिजूल खर्ची ने भी कहानी के रचाव को ठेस पहुंचाई है। स्पष्ट है कि राकेश की इन कहानियों में कथ्यगत ईमानदारी तो है, किंतु शैल्पिक प्रयोगशीलता भी है। यही कारण है कि कहानियां जहां कथ्य के धरातल पर मन को बांधती हैं, वहीं शिल्प के धरातल पर मन में कुढ़न पैदा करती हैं। ये कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनमें सूक्ष्म सांकेतिकता, व्यंजनात्मक प्रतिभा और संश्लिष्ट चरित्रों को उभारने के लिए प्रतीकों की अवतारणा ने इन कहानियों में प्रयोगशीलता के आयाम खोल दिए हैं। नोट एक, वारिस, सोया हुआ शहर, पृष्ठ 70। दो, वारिस, सोया हुआ शहर, पृष्ठ 73।